नमस्कार श्रोताओ, छिंदवाड़ा वायलेंस सबका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है मेरी भी आवाज सुनो में महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि का अधिकार। हमारे देश में समानता के अधिकार के तहत महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि का अधिकार है। इसके तहत बेटी हो या बेटा हो, दोनों को संपत्ति का अधिकार होता है। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हुए हैं। गायकवाड़ सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप संवाद कर रहे हैं और इससे समाज के अंदर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात होगी। इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
जी सर, सर ये महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि का अधिकार है, किस तरीके से देख रहे हैं सर इसको?
नहीं, ये जो सब्जेक्ट है भूमि संपत्ति में हस्ता मतलब उनके अधिकार की बात, तो ये संविधान का जो आर्टिकल है 15(1), क्योंकि उसमें ये कहा गया कि लिंग के आधार पर भेदभाव वाली बात को विरोधात्मक बताया गया, उसमें मतलब समानता का अधिकार दिया गया। तो ये समानता है। अभी देखिए, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब लागू था तो वहाँ आर्टिकल 35(a) था। 35(a) के अंतर्गत ये था कि महिलाएं संपत्ति नहीं खर्ची थी। ये एक विरोधाभास है हमारी संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार यदि कानून के माध्यम से अधिकार दे रहा है, वो क्यों नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो देगी नहीं देगी, उसकी स्वेच्छा के ऊपर है। लेकिन वो भी अपने अधिकार को दर्शा सकती, क्योंकि अभी बहुत सारे मामले कोर्ट में आए ऐसे चल रहे हैं कि जहाँ पे संपत्ति पे बंटवारे की मांग हो रही, तो कई बार ये समाज में एक बहुत बड़ा विघटन का कारण भी बनते जा रहा है। इसलिए सरकार ने इसको कानूनन रूप से अभी अमलीजामा पहनाने की कोशिश की। अभी तहसील आप इसमें जो तहसीलदार महोदय होते हैं, वो जब भी ऐसे संपत्ति के बंटवारे की बात होती है तो वो बहन को और भाई दोनों को सामने रख के अपना निर्णय देते हैं, अकेले में नहीं देने को देखते, क्योंकि वो कहते कि भाई उसका भी हक बनता है उसमें। तो ये अच्छी पहल है सरकार की, इससे संवैधानिक व्यवस्था को एक मजबूती मिलेगी और नारी सशक्तिकरण का जो सरकार का जो उद्देश्य है उसमें काफी मतलब उसको अच्छी मजबूती मिलेगी और सरकार की बात जनता तक तो बहुत अच्छे से जाएगी। तो इससे हमारे समाज के अंदर जो विरोधाभासी स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। जी
सर, महिलाओं के लिए इस कानून के माध्यम से उनके जीवन यापन में और कई कारणों से या कई दुर्घटनाओं में विधवाएं हो जाती है महिला, उनके जीवन यापन में कितना परिवर्तन देखते सर?
नहीं, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और सरकार देखिए, सरकार वो सबसे अच्छी कहलाती जो जन कल्याण के काम करती, और जो भारत सरकार अभी वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है वो महिलाओं के अधिकारों की समानता के लिए बहुत काम कर रही है। अभी देखिए, 3 तलाक का जो मामला था उसमें उनको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का हक मिल गया, यदि वो संपत्ति में उसका बंटवारा करती। अभी देखिए, एक लड़की का मामला चल रहा है संसद के कोर्ट में, वो मेरी परिचित है मेरे गांव की। तो उनके ससुर जो है वो उनके पति का देहांत हो गया अटैक से, लेकिन उनके जो ससुर है वो अपनी नातिन को और बहू को कुछ भी नहीं देना चाहते। तो अब बताइए, वो लड़की अपना जीवन का निर्वाह और उनके वो बेटी का निर्वाह कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में ये जो संपत्ति का अधिकार है ये बहुत कारगर सिद्ध होगा। अपन उस दृष्टि से ना देखें जहाँ पे संपन्नता होती है, बहुत सारे आर्थिक रूप से सक्षम लोग होते हैं, वहां कोई उसका नहीं। पर जिसके पति का देहांत हो गया है, अभी देखिए ये जो सैनिक सम्मेलन हुआ तो मैं देखा वहां ऐसी ऐसी बुजुर्ग महिलाओं को उन्होंने बहुत सम्मानित ढंग से सम्मानित किया, तो मैं देखा उनका जीवन निर्वाह कैसे होता होगा, उनके पास संपत्ति है भी कि नहीं है। तो सरकार यदि इस तरह से कोई कानून बना के यदि दे रही है तो ये तो बहुत अच्छा है, वो अपने जीवन निर्वाह करेगी। और आज के समय में आर्थिक सुरक्षा बहुत जरूरी है, तो इस तरह के कानूनों से उन महिलाओं को जो मतलब जिनके पति का देहांत हो गया, जो इनकी शादी नहीं हो चुकी है, बीड़ो है, तो उनके लिए आर्थिक सुरक्षा का एक सशक्त बहुत ही मजबूत माध्यम है और बहुत अच्छी। मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, सरकार कर रही है ऐसा। तो
जी सर, समानता के अधिकार में कितना नींव का पत्थर साबित होगा सर ये महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि का अधिकार?
नहीं, तो ये तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि नींव का पत्थर नहीं, उससे भी एक कदम आगे होगा। क्योंकि अब देखिए, हमारा जो आर्टिकल 14 से जो 18 वाला जो बात करता है समानता का अधिकार, उसमें 15 जो है, 15(1), 15(2), 3, उसमें महिलाओं के साथ समानता की बात होती है वहां कहीं पे भी, क्योंकि हम लोग उसको जान नहीं पाते। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बाकी जो ऐसे आयोग जो महिलाओं के हितों की रक्षा करती, वहां ये समानता वाली बात आती है। अभी देखिए, शनि शिंगणापुर का जो मंदिर था वहां पे महिलाओं को प्रवेश नहीं था, लेकिन वो आर्टिकल 15(1) के तहत जिसमें लिंग के आधार पर भेदभाव वाली बात को कोर्ट में डाला गया, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया। तो ये समानता का बहुत बड़ा सूत्र है ये, और इससे महिलाओं को अपने जीवन को नए तरीके से और सशक्त तरीके से जिंदगी जीने का एक आधार मिलेगा, उनके अंदर विश्वास निर्मित होगा और अधिकारों की न्यायोचितता बढ़ेगी, इससे कानून का समानता का भाव बढ़ेगा तो समाज और सुदृढ़ होगा। क्योंकि भाई हमारा समाज समानता से देखता है, मतलब कानून समानता से देखता है, भले ही समाज में आज भी अनौपचारिक रूप से सब बातें होती है कि महिलाओं को दूसरे दर्जे का स्थान रखता है कान, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया, उनकी समिति के द्वारा जो निर्माण किया गया, उसमें क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जो सबसे पहले जब बात हो रही थी महिलाओं के हितों को लेकर ही तो उन्होंने बात रखी थी, महिला हिंदू कोड बिल को लेकर, तो मतलब महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए जब उनकी बात नहीं मानेगी तो उन्होंने कहा मैं इस्तीफा दे देता हूँ। तो वो उस समय से क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात संविधान में विशेष रूप से दी गई। अभी देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग बना 92 में, वो क्या करता है, महिलाओं के हितों की रक्षा तो करता है, और जिस तरीके से अभी देखिए मणिपुर में जिस तरह से महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, मध्य प्रदेश आज देखिए अपराध में, मतलब मैं पढ़ा था कि कितने मतलब लाखों की संख्या में महिलाएं लापता है, तो ये सब क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आर्थिक विषमताएं हैं, कई बच्चियों को बेचा जाता है, कईयों के साथ यौन शोषण की घटनाएं घटती है, और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और यदि इस तरह से सरकार यदि उनको कानूनन रूप से संपत्ति में अधिकारी बनाता है तो समाज में जो असामाजिक तत्व उसकी कमियां हो जाएगी और समाज एक मजबूत और सशक्त समाज के निर्माण में हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सर, महिलाओं के लिए संपत्ति और भूमि का अधिकार है, और अन्य अधिकारों को लेकर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में इसकी जागरूकता के लिए क्या प्रयास होने चाहिए या किए जाने चाहिए?
नहीं देखिए, जो स्व सहायता समूह है या जो आंगनवाड़ी जो एक बहुत बड़ा मंच है ग्रामीण स्तर पे, उनके बीच में बीच बीच में जो कानून के जो जागृत लोग है, जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो सशक्त रूप से उनके बीच में जाके इस तरह का सेमिनार करे, संगोष्ठियां करे, उनके साथ वार्तालाप करें, उनको बताएं, क्योंकि अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि वो उनके बीच में जागृति लाए। लेकिन हमारे अधिकार कानून तो है लेकिन उसके क्रियान्वयन की बहुत बड़ी, अभी मेरे पास कई ऐसी महिलाएं आती है जो उनको बेचारी को जानकारी नहीं होती, तो हम लोग तो उनको बड़े पर्याप्त रूप से बताते कि भाई आप यहाँ फोन लगाओ, यहाँ आवेदन करो, ऐसा करो, क्योंकि हमारी जो वकील लोग है वो पता नहीं महिलाओं के जो अधिकार है उनकी रक्षा के लिए काम नहीं कर रहे लगता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं के तलाक के जो मामले हैं, अभी वो मेरे पास जो लड़की का मामला था वो बता रही थी कि सर बोले वकील साहब हमारा फोन ही नहीं उठाते, तो ये नहीं समझ में आ रहा। अभी एक मामला चल रहा हमारे स्टूडेंट के भाई का, वहां पे भी ये वकील लोग क्या करते ये नहीं समझ में आ रहा, और आज बोला भी है कि जज और वकील यदि मिलकर काम करे तो फिर तारीख पे तारीख मिलेगी, ये भारत सरकार का निर्णय आती है, इसलिए उसमें कुछ संशोधन की बात हो रही है, और सही बात है कि वकील लोग कर क्या रहे ये नहीं समझ में आ रहा। बहुत सारी महिला हमारे पास आती है, उनका मामला हम लोग अपने मित्र लोग उनको केस देते हैंडल करते, तो ऐसे में न्याय नहीं मिलेगा ना, न्याय जब नहीं मिलता तो फिर एक फुलन देवी पैदा होती है साहब, फिर एक निर्मल गडेरिया पैदा होती है, माखन सिंह मलखान सिंह पैदा होते, तो कानून का उचित क्रियान्वयन बहुत जरूरी है, उसकी जिम्मेदारी जिन लोगों को दी जाती है उसके जो इंस्ट्रक्टर है उनको ये काम करना चाहिए, यदि आप काम नहीं करोगे तो फिर समाज में विघटनकारी असामाजिक तत्व मणिपुर जैसी घटनाएं बढ़ती है फिर। जी
जी, तो ये थे हमारे साथ गायकवाड़ सर, जिन्होंने मेरी भी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में महिलाओं के लिए संपत्ति व भूमि के अधिकार पर अपनी प्रतिक्रियाएं मोबाइल वाणी के साथ साझा की। सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत
बड़ा वाली सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।